अच्छा भाई, आज हम शरह जामी शुरू करेंगे और निसाब के अंदर तो शरह जामी मरफूआत से लेकर मबनियात तक शामिल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कि जिस कदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किताब का कर लें। इंशाअल्लाह आगाज से किताब को शुरू करेंगे इब्तिदा से, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किताब का हिस्सा हो जाए। दुआ करो अल्लाह ताला तौफीक दे और हर किस्म की रुकावटों से हिफाजत फरमाए कि हम किताब को इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर पढ़ लें। किताब का लुत्फ ही तब आता है जब इंसान उसको मुकम्मल पढ़ लेता है इब्तिदा से इंतहा तक और जान लेता है कि इसके अंदर मुसन्निफ ने क्या क्या बातें की हैं भाई। और फिर याद रखना, ये शरह जामी में वो कदम कदम पर तरकीब की बात करते हैं, तो आपको तरकीब आनी चाहिए और तरकीब से पहले सर्फ बहुत जरूरी है भाई। जिस तालिब इलम को सर्फ आती होगी वो आराम से नहव का भी माहिर बन जाता है, और जिस तालिब इलम को सर्फ अच्छी ना आए वो नहव भी पूरी कोशिश भी कर ले तो उसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। तो सर्फ आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ हम इंशाअल्लाह ये शुरू में कुछ दिन हम नहवी तरकीब कर लेंगे, 10-15 सबक तकरीबन कर लेंगे नहवी तरकीब के, और वो मेरा खास तरीका है तरकीब करवाने का, बहुत आसान है। इंशाअल्लाह आप वो शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तरकीब तो बहुत आसान है, तलबा बड़े परेशान होते हैं तरकीब में, लेकिन उस तरीके से आप बेहतरीन तरकीब सीख जाएंगे, आपकी बेहतरीन बुनियाद बन जाएगी। और फिर उसके बाद जब हम आगे जामी को फिर हल करेंगे तो जामी की बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको तरकीब ही नहीं आती तो फिर जामी आपकी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो कदम कदम पर तरकीब की बात करते हैं। तो लिहाजा आज हम किताब का आगाज करेंगे और फिर कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तरकीब के सबक चंद दिन चला लें ताकि आपकी बुनियादी तरकीब ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर हम किताब को चलाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे तमाम असातिज़ा और बुजुर्गों का तरीका है वो किताब के शुरू में दुआ पढ़ते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और उनके साथ तमाम तलबा भी पढ़ते हैं, और बुजुर्गों के हर तरीके में अल्लाह ने बड़ी बरकात अनवारात और रहमतें रखी हैं। तो हम भी किताब के शुरू में उसी तरह दुआ पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम। रब्बना यस्सिर लना हादल किताब वला तुअस्सिरहु व तम्मिमहु बिल खैर व बिका नस्ताईन या फत्ताहु या अलीमु। रब्बना यस्सिर लना هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ آمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا
و
مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا بھائی اب کتاب کی عبارت بھی تھوڑی سی دیکھ لیجئے. دیکھیے بھائی کتاب پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ للعلامة المشتهر في المشارق والمغارب الشيخ ابن الحاجب تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه نظمتها في سلك التقرير وسمت التحرير للولد العزيز ضياء الدين يوسف حفظه الله سبحانه عن موجبات التلهف والتأسف وسميتها بالفوائد الضيائية لأنه لهذا الجمع والتاليف كالعلة الغائية نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. کلام دو قسم پر ہے, ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر. نظم جو ہے اشعار کو کہتے ہیں اور نثر یہ جو عام کلام ہے جو عام کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں, خود بھی جو تحریر وغیرہ آپ لکھتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ نثر ہے. اور نثر کے اندر یاد رکھو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن جو ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ختم ہوں تو ان کو فقرے کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقرے. فقرے فا ہے قاف دو نقطوں والا را اور گول تا بھائی فقرتن. تو یہ فقرے جو ہیں یہ ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے, جیسے اشعار کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے. تو نثر کے اندر بھی اس طرح کیا جاتا ہے. بعض اوقات کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لائے جاتے ہیں جن کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں, ٹکڑے ہیں کلام کے, ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں وقف کیا جائے بھائی, تاکہ ایک جیسے آواز کے ساتھ ایک جیسے وزن پر ایک جیسے حرف پر یہ ختم ہو. ورنہ کہیں پر کچھ اعراب وغیرہ یا حرکت میں فرق آ جائے گا, لیکن جب سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر ایک جیسا ان کا وزن برقرار رہے گا. جیسے یہاں پر اگر دیکھو اب ملا کر پڑھیں تو یوں پڑھیں گے الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ. دیکھا فہذہ فوائد وافیہ, فہذہ فوائد وافیہ. یہاں پر دیکھو تنوین آ رہی ہے, ضمہ ہے, اور آگے آ رہا ہے بحل مشکلات الکافیتی, وہاں تا کے نیچے زیر ہے. تو دونوں میں دیکھو فرق آ گیا. حالانکہ یہ فقرہ ہے, فقرے کا اختتام کیا ہے؟ ایک جیسے حروف اور ایک جیسے وزن پر ہوتا ہے, تو وزن ٹوٹ جائے گا اگر ہم اس کو یوں پڑھیں فہذہ فوائد وافیتن بحل مشکلات الکافیتی. तवज्जो है, वाफियतुन पर जम्मा भी आएगा और तनवीन भी आएगी, और काफिया पर तनवीन नहीं आएगी क्योंकि अलिफ्लाम दाखिल है और जेर आ जाएगी, तो वजन एक जैसा नहीं रहेगा। तो इनमें फिर क्या किया जाता है, साकिन करके पढ़ा जाता है इनको। तो यूं पढ़ेंगे, फहाद ही फवाइदु वाफिया बिहल मुश्किलातिल काफिया। देखा, अब वजन बिल्कुल एक जैसा है, तरीका समझ में आया। तो बहरहाल जैसे भी आप पढ़ लें ठीक है, लेकिन फिक्रों में मुनासिबत के लिए बेहतर यह है कि इस तरीके से इसको पढ़ा जाए। तरीका सारा समझ में आ गया। ये जामी जो है ये शरा है काफिया की, इसके अंदर एक तो मतन आएगा और उसके साथ साथ उसकी शरा होगी। मतन जो है ये काफिया है, और काफिया आप पढ़ चुके हैं कि ये अल्लामा इब्ने हाजिब की किताब है भाई, अल्लामा इब्ने हाजिब। इब्ने हाजिब रहिमहुल्लाह के बारे में एक बात जो आम किताबों में दर्ज है वो जिक्र कर देता हूं। हाजिब अरबी जुबान में दरबान को कहते हैं और इसी तरह सेक्रेटरी को भी कहते हैं। तो आम जितनी उर्दू की शुरुआत आप उठाएंगे उन्होंने लिखा होता है कि अल्लामा इब्ने हाजिब चूंकि दरबान के बेटे थे तो इसलिए इनको इब्ने हाजिब कहा जाता है भाई। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है भाई। दरबान का माना तो है चौकीदार भाई, जो दरवाजे पर खड़ा होता है। हाजिब का दूसरा माना है सेक्रेटरी भाई। अल्लामा इब्ने हाजिब के वालिद चूंकि उस शहर का जो गवर्नर था उसके सेक्रेटरी थे, और ये बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई। दरबान का तो छोटा सा ओहदा है भाई, और सेक्रेटरी का बहुत बड़ा ओहदा होता है। बादशाह का सेक्रेटरी भी बादशाह की तरह होता है, लोग उससे डरते हैं भाई। और किसी ने बादशाह से मिलना हो तो सेक्रेटरी से वक्त लेना पड़ेगा, और वो नहीं मिलाएगा तो बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकती भाई। वही वक्त भी देगा, वही बादशाह से मुलाकात भी करवाएगा। तो ये बहुत बड़ा ओहदा है भाई, चूंकि वो एक बड़े बाप के बेटे थे और इसी वजह से वो इब्ने हाजिब के नाम से मशहूर हुए भाई। समझ में आया? और होता भी इसी तरह है। आप भी देखते हैं कि तलबा मदरसे में पढ़ने वाले भाई, जाहिर सी बात है इनमें से कोई ताजिर का बेटा होगा, कोई दुकानदार का बेटा होगा, कोई इसी तरह और मुख्तलिफ का कोई किसान का बेटा होगा। लेकिन देखो ये कोई बड़े मनासिब नहीं है, लिहाजा इस नाम से तलबा मशहूर नहीं होते। लेकिन अगर कोई गवर्नर का बेटा मदरसे में पढ़ रहा हो तो सारे उसको इसी नाम से याद करेंगे कि वो गवर्नर का बेटा है। आज गवर्नर का बेटा भी सबक में था या सबक में नहीं था, तो चूंकि उनके वालिद का ओहदा बड़ा था, ऊंचा मकाम था, गवर्नर के सेक्रेटरी थे, और गवर्नर का सेक्रेटरी भी इसी तरह होता है जैसे गवर्नर, तो इसीलिए वो इब्ने हाजिब के नाम से मशहूर हुए। बात समझ में आ गए? तो ये मतन उनका है भाई, और बड़ा आजीम मतन है जिसमें उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया भाई। पूरे नह का खुलासा और नचोड़ एक छोटे से रिसाले में लिख दिया उन्होंने। आपने जो काफिया पढ़ी वो तो मोटे मोटे हुरूफ में लिखी हुई होगी, एक सतर में ज्यादा से ज्यादा तीन चार लफ्ज होंगे, और पूरे सफे पर ज्यादा से ज्यादा तीन चार सतरें होंगी या पांच सतरें होंगी। अगर इसको आम खत के साथ लिखा जाए तो ये पूरी काफिया शायद 10-12 सफे भी मुश्किल से बने। तो आप अंदाजा लगाइए कि 10-12 सफों में पूरी नहव को समेट देना और बड़ी ही खूबसूरत इबारत के साथ ऐसी किताब जिसने बे इंतहा मकबूलियत हासिल की उलमा तलबा में भाई। तो इस काफिया की शरह है ये जामी भाई, जामी, और ये भी बड़ी प्यारी और बड़ी कीमती शरह लिखी साहिब जामी ने। आगे लिख लीजिए भाई, साहिब जामी के अहवाल लिख लीजिए, लिखिए भाई साहिब जामी के अहवाल लिखो भाई। आप क्यों नहीं लिख रहे भाई, कोई वैसे ना बैठे, कलम साथियों से लो। साहिब शरह जामी का नाम, साहिब शरह जामी का नाम नूरुद्दीन, नूरुद्दीन अबुल बरकात, अबुल बरकात عبدالرحمن ابن احمد ہے، عبدالرحمن ابن احمد ہے۔ بھئی یہ نام کی ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نور الدین، ابو البرکات، عبد الرحمن۔ نور الدین جو ہے یہ ان کا لقب تھا، یہ کیا تھا ان کا لقب تھا۔ قدیم زمانے میں علماء کو قوم کی طرف سے اور بادشاہ وغیرہ کی طرف سے مختلف القاب دیے جاتے تھے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، جتنا بڑا عالم ہوتا اسی طرح کا اس کی شان کے مطابق ان کو لقب دیا جاتا تھا اور اسی سے لوگ ان کو ذکر کرتے تھے۔ تو ان کا لقب کیا تھا؟ نور الدین، نور الدین۔ اور یہ ابو البرکات یہ ان کی کنیت ہے بھائی، وہ نام جس کے شروع میں اب ام وغیرہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ تو ابو البرکات کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے۔ اور عبد الرحمن ان کا نام ہے بھائی، اور یہ بیٹے ہیں احمد کے بھائی۔ جی آگے لکھیے، اسی طرح آپ کا لقب عماد الدین بھی ہے، عماد الدین بھی ہے۔ البتہ آپ کا لقب نور الدین زیادہ مشہور ہے، البتہ آپ کا لقب نور الدین زیادہ مشہور ہے۔ الگ سطر میں لکھیے بھائی، الگ سطر میں جب بھی لکھیں، جب بھی یاد رکھیں، ویسے بھی کوئی مضمون لکھیں، دونوں طرف کچھ جگہ چھوڑ دیا کریں بھائی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مسلسل لکھیں، بڑا برا معلوم ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف کوئی ایک ایک انچ جگہ چھوڑ دیا کریں صفحے کے، اور پھر اس میں پیرے بنایا کریں بھائی، ہر دو چار چھ سطروں کے بعد نیا پیرا بنا دیا کریں، نئی سطر سے شروع کیا کریں، اور یہ جو پھر نئی سطر شروع کریں اس میں مزید پھر ایک ڈیڑھ انچ اور جگہ چھوڑ دیا کریں، تاکہ پتہ لگے کہ یہاں سے نیا پیرا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے تحریر جو ہے خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ آپ بھی کتابوں میں دیکھیں گے، جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے آپ کو اسی طرح تحریر آپ دیکھیں گے کہ مختلف پیرے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کلام کے حصے بن جاتے ہیں، کلام کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور تحریر بھی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ جی تو آگے الگ سطر لکھیے، آپ کے والد کا وطن اصلی ایران کا علاقہ اصفہان ہے، ایران کا علاقہ اصفہان ہے۔ اصفہان سواد کے ساتھ ہے بھائی، ایران کا علاقہ اصفہان ہے۔ اصفہان کی ایک بستی دشت بھائی دال شین تا لمبی دو نقطوں والی، دال شین اور تا دو نقطوں والی بھائی لمبی تا، اصفہان کی ایک بستی دشت میں آپ کے آباؤ اجداد آباد تھے، آپ کے آباؤ اجداد آباد تھے۔ پھر کسی وجہ سے آپ کے والد صاحب خراسان کے ایک قصبے جام منتقل ہو گئے، ایک قصبے جام میں منتقل ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جام، اسی نسبت سے آپ جامی کہلاتے ہیں۔ تو جام منتقل ہو گئے، افغانستان کا مغربی حصہ خراسان کہلاتا تھا۔ آج کل وہ علاقہ جہاں جام بستی ہے جہاں جام بستی ہے وہ افغانستان کا صوبہ غور کہلاتا ہے غین وورا غور کہلاتا ہے. تو ملا عبد الرحمن جامی صوبہ غور کی اس بستی جام میں پیدا ہوئے تیئیس شعبان 817 ہجری 817 ہجری مطابق 1414 عیسوی 1414 عیسوی الگ سطر. اسی جام بستی کی نسبت سے آپ نے اپنا تخلص جامی رکھا تخلص بھئی وہ نام جو شعراء اشعار میں استعمال کرتے ہیں. تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے تخلص صاد کے ساتھ ہے بھئی تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے اور آپ کی جائے پیدائش کی طرف نسبت بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جیسے لاہوری کا کیا معنی؟ لاہور والا، لاہور کی طرف منسوب. تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے اور آپ کے علاقے کی طرف نسبت بھی ہے، یعنی جام کا رہنے والا. آگے الگ سطر لکھیے. آپ کی پیدائش کے چند برس بعد آپ کے والد صاحب اس علاقے کے مشہور شہر ہرات منتقل ہو گئے ہرات ہا را الف اور لمبی تا ہرات منتقل ہو گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی ہرات میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی مدرسہ نظامیہ نون ہے اور زوا ہے بھائی، توازوا نظامیہ لکھ لیا. ہرات میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی مدرسہ نظامیہ تھی. اپنے والد بزرگوار سے ابتدائی صرف و نحو پڑھنے کے بعد یہاں پر ملا جامی کو मुल्ला जामी को अल्लाह ने यह मौका नसीब फरमाया, अल्लाह ने यह मौका नसीब फरमाया कि आलम इस्लाम की इस आजीम यूनिवर्सिटी में अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा और असातिजा से उलूम हासिल करें बाद में आप उलूम की तकमील के लिए समरकंद भी तशरीफ ले गए। समरकंद सीन मीम रा काफ नून दाल। बाद में आप उलूम की तकमील के लिए समरकंद भी तशरीफ ले गए आगे अलग सतर में लिखिए। आपके असातिजा में ख्वाजा अली समरकंदी भी शामिल हैं लिख लिया। आपके असातिजा में ख्वाजा अली समरकंदी भी शामिल हैं जो शागिर्द थे मीर सैयदुस्सनद के मीर सैयदुस्सनद तो आप जानते हैं भाई, नहमीर किताब आप उनकी पढ़ चुके हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं भाई। आगे लिखिए, इसी तरह मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद जाजरी जीम अलिफ जीम रा या। इसी तरह मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद जाजरी भी आपके असातिजा में से हैं ये शागिर्द थे अल्लामा सादुद्दीन सीन ऐन दाल तफ्ताजानी के तफ्ताजान दोनों जगह ता दो नुक्तों वाली है भाई, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी के। ये अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी भी भाई बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और इनकी बहुत सी किताबें दाखिले दर्स हैं। एक किताब आप शरह तहजीब पढ़ चुके हैं सालिसा में, इसका जो मतन है तहजीब वो अल्लामा तफ्ताजानी का है भाई। इसी तरह मुख्तसरुल मानी आप खामिसा में पढ़ेंगे, वो भी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी की है। और इसी तरह आप शरह अकायद पढ़ेंगे, वो भी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी की है। तो उनकी कई किताबें दाखिले दर्स हैं। इसी तरह तौजी तलवी है भाई। आगे लिखिए, इसी तरह मौलाना जुंद उसूली जीम नून दाल भी आपके असातिजा में से थे ये भी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं भाई। मुल्ला जामी को अल्लाह जल्ला शानुहू ने मुल्ला जामी को अल्लाह जल्ला शानुहू ने बे इंतहा जहानत व फतानत नसीब फरमाई थी, बे इंतहा जहानत व फतानत नसीब फरमाई थी। ये मशहूर व मारूफ असातिजा भी आपकी जहानत पर हैरत का इजहार करते बात समझ में आ रही है भाई? बहुत जहीन थे ये भाई, अल्लाह ने इनको अजीब जहन नसीब फरमाया था भाई। ये इनके असातिजा बड़े बड़े जिबालुल उलूम हैं, लेकिन ये भी मुल्ला जामी की जहानत पर हैरान रह जाते थे भाई। अल्लाह ने उनको ऐसा जहन नसीब फरमाया था। आगे लिखिए अलग सतर, तकमील उलूम के बाद, एक मरतबा ख्वाब में आपको एक बुजुर्ग की जियारत हुई, जिन्होंने आपको नसीहत की, कि किसी अल्लाह वाले का दामन थाम कर, उनसे हिदायत और रहनुमाई हासिल करो, चुनांचे मुल्ला जामी ने, उस जमाने के अजीम वलीउल्लाह, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार अलिफ हा है, रा अलिफ रा, उस जमाने के अजीम वलीउल्लाह ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार की बैअत कर ली, और उनके हलका सुलूक में दाखिल हो गए, सुलूक सीन लाम वाव और छोटा काफ है, और उनके हलका सुलूक में दाखिल हो गए, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहिमहुल्लाह की, सोहबत और उनके फ्यूज़ो बरकात ने, बहुत जल्द आपको, रूहानियत के आला मकाम पर पहुंचा दिया, इसी तरह मुल्ला जामी रहिमहुल्ला ने, शेख सादुद्दीन काशगरी, रहिमहुल्ला और दीगर बड़े बड़े मशाइख, से भी इस्तेफादा किया, आगे अलग सतर भाई, उलूम व फुनून में अल्लाह जल्ला जलालुहू ने मुल्ला जामी को बड़ा ऊंचा मकाम नसीब फरमाया था, बड़ा ऊंचा मकाम नसीब फरमाया था। इल्म-ए-तफसीर, इल्म-ए-हदीस, इल्म-ए-सर्फ, इल्म-ए-नहव, इल्म-ए-मंतिक। लिख लिया भाई, क्या लिखा? इल्म-ए-तफसीर, इल्म-ए-हदीस, इल्म-ए-सर्फ, इल्म-ए-नहव, इल्म-ए-मंतिक, इल्म-ए-हैअत। भाई हा दो आंखों वाली, या और फिर हमजा और फिर लंबी ता है। इल्म-ए-हैअत ये सितारों वगैरह का जो इलम है, इल्म फलकियात जिसको कहते हैं, इल्म हैअत, इल्म अदब, इल्म अदब, शेरो शायरी और तसव्वुफ में सौद के साथ है तसव्वुफ, और तसव्वुफ में आप बहुत बुलंद मकाम रखते थे, में आप बहुत बुलंद मकाम रखते थे, जिसका अंदाजा आपकी तसानीफ से लगाया जा सकता है, आपकी जिंदगी में ही आपकी शोहरत पूरे आलम इस्लाम में फैल गई थी। क्या लिखा? आपकी जिंदगी में ही आपकी शोहरत पूरे आलम इस्लाम में फैल गई थी। उलमा और तलबा की जुबानों पर आपके सूफियाना अशआर जारी थे, अलग सतर। उलमा ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में आपकी तसानीफ की तादाद 54 जिक्र की है। 54 बाई 5 4 54 जिक्र की है, जबकि बाज़ उलमा लिखते हैं कि आपकी तसानीफ की तादाद 80 से ज्यादा है। 80 से ज्यादा है। अलग सतर। इल्म-ए-नहव में आपकी मशहूर व मारूफ किताब शरह-ए-जामी काफिया की शरह है, जो आपने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए तहरीर फरमाई। आपके तमाम बेटे बचपन ही में वफात पा गए थे, सिवाय एक बेटे के, सिवाय एक बेटे के जिसका नाम जियाउद्दीन यूसुफ था, जिसका नाम जियाउद्दीन यूसुफ था, उसी के लिए आपने शरहे जामी तसनीफ फरमाई, उसी के लिए आपने शरहे जामी तसनीफ फरमाई। और बेटे की निस्बत से इस शरह का नाम, और बेटे की निस्बत से इस शरह का नाम अल्फवाइदुज़ियाइयाह, अल्फवाइद अज़ियाइयाह, अज़ियाइयाह। और बेटे की निस्बत से इशारा का नाम अल्फवाइदुज़ियाइयाह रखा। बात समझ में आई भाई? तो ये शरहे जामी का असल नाम क्या है? अल्फवाइदुज़ियाइयाह, लेकिन ये मशहूर शरहे जामी के नाम से है। आगे लिखें, मगर इस किताब की ज्यादा शोहरत, मगर इस किताब की ज्यादा शोहरत शरहे जामी के नाम से है, शरहे जामी के नाम से है। अलग सतर, काफिया की बहुत सी शुरूहात लिखी गई, काफिया की बहुत सी शुरूहात लिखी गई, मगर सबसे ज्यादा शोहरत, मगर सबसे ज्यादा शोहरत काफिया की दो शरहों को हासिल हुई, काफिया की दो शरहों को हासिल हुई। एक अल्लामा रजी की शरह काफिया, एक अल्लामा रजी, रा ज़ाद और या है, रा ज़ाद भाई, स्वाद ज़ाद, रा ज़ाद या। एक अल्लामा रजी की शरह काफिया और एक अल्लामा जामी की शरह काफिया, और एक अल्लामा जामी की शरह काफिया। शरह जामी सैकड़ों सालों से, शरह जामी सैकड़ों सालों से उलमा और तलबा की, उलमा और तलबा की तवज्जोह का मरकज है, तवज्जोह का मरकज है, और अवलियाउल्लाह, और अवलियाउल्लाह इसे पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं, जिससे इस किताब की, जिससे इस किताब की इंदल्लाह कबूलियत का, इंदल्लाह कबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अलग सतर लिखिए, मुल्ला जामी की वफात, मुल्ला जामी की वफात जुम्मा के रोज, जुम्मा के रोज 18 मुहर्रम, 18 मुहर्रम 898 हिजरी, 898, 898 हिजरी, 898 हिजरी मुताबिक, मुताबिक 1492 ईस्वी, 1492 1492 1492 ईस्वी को हेरात शहर में हुई को हेरात शहर में हुई और यहीं पर आपको दफनाया गया और यहीं पर आपको दफनाया गया। बस भाई, मुल्ला जामी के अहवाल मुकम्मल हुए। मुल्ला जामी को अल्लाह ने बड़ी कबूलियत नसीब फरमाई भाई, और ये बड़े अल्लाह वाले थे, अजीम वलीउल्लाह थे भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुल्ला जामी को वालेहाना मोहब्बत अकीदत थी भाई, हद से ज्यादा मोहब्बत। वैसे तो हर मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन कुछ लोगों के अफ़आल से बाकायदा यह मोहब्बत छलकती हुई नजर आती है भाई। तो मुल्ला जामी भी ऐसी ही शख्सियत थे। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं कि मुल्ला जामी ने एक मर्तबा अपने शहर से मदीना मुनव्वरा का सफर किया सिर्फ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के रोजा मुबारक की जियारत के लिए भाई, बगैर हज के। ये सिर्फ जो रोजा अकदस की जियारत मकसूद थी भाई। और इस सिलसिले में बुजुर्गों ने बहुत से वाकयात भी नकल किए हैं। एक अजीब वाकया इंसान सुनकर हैरान रह जाता है। मुल्ला जामी हज के लिए तशरीफ ले गए और हज के बाद फिर इरादा किया कि अब मस्जिद नबवी में हाजिरी दूं, मदीना की तरफ जाऊं भाई। तो जो मक्का का गवर्नर था उसको ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हुई और हुजूर ने फरमाया कि ये मुल्ला जामी आए हुए हैं मक्का मुकर्रमा में और अब ये मेरे पास मदीना आना चाहते हैं, इनको रोको भाई, मेरे पास न आए, मेरे पास न आए। तो मक्का के गवर्नर ने आपको मना कर दिया कि आपने मदीना का सफर नहीं करना। और इधर मुल्ला जामी, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क की हद तक मोहब्बत थी भाई उनकी। और मैंने जैसे बताया कि सिर्फ हुजूर की रोजे की जियारत के लिए ही एक मर्तबा सफर किया था उन्होंने मदीना का। हालांकि उस जमाने में सफर कितना मुश्किल काम था भाई, कई कई महीने लगते थे भाई, और जंगलों से गुजरना पड़ता था और कोई आराम ठिकाना वगैरह रास्ते में नहीं होता था भाई। चुनांचे बादशाह वो गवर्नर ने मना कर दिया, लेकिन मुल्ला जामी फिर छुप कर चल पड़े भाई। फिर ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, मक्का के गवर्नर को हुक्म दिया कि भाई उनको मैंने कहा था उनको मना करो, वो चल पड़े हैं भाई। तो गवर्नर ने आदमी पीछे दौड़ाए और फिर वो मुल्ला जामी को पकड़ कर ले आए। गवर्नर ने उनको कैद में डाल दिया कि मैंने मना किया था, फिर मदीना जा रहे हैं। तो तीसरी रात फिर ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हुई और वो मक्का के गवर्नर से फरमाने लगे, भाई मैंने इनको जो मना किया यहां आने से इस वजह से नहीं कि मैं इनसे नाराज वगैरह था, वजह सिर्फ यह थी कि इन्होंने कुछ अशआर लिखे हैं नातिया मेरी मदा के अंदर, और वो अशआर वो आकर मेरे रोजे पर वो अशआर पढ़ते तो ऐसे अशआर थे कि रोजे से मेरा हाथ निकलता उनसे मुसाफा करने के लिए, और जिससे फितना फैलने का खतरा था, इसलिए मैंने मना किया कि इनको न आने दो। तो देखो ये कितना ऊंचा मकाम था। तो गवर्नर ने फिर कैद से उनको निकाला और उनका बड़ा एजाज और इकराम किया भाई। इसी तरह वाली साहब रहमतुल्लाह से एक मर्तबा यह वाकया सुना कि मुल्ला जामी जब हाजिर होते हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पर तो ये शेर पढ़ा करते थे बड़े नाज से, बसफर में रवम चे फरमाई सैयदी ओ मुर्शिदी ओ मौलाई, कि मैं सफर पर जा रहा हूं, ए मेरे आका ए मेरे सरदार आप क्या फरमाते हैं। बसफर में रवम चे फरमाई सैयदियो मुर्शिदियो मौलाई। तो जवाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से रोजे से वो जवाब सुनते थे बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम का, और हुजूर फरमाते बसफर रफ्तनत मुबारक बाद بسفر رفتنت مبارک بات بسلامت روی و باز آئی، کہ تمہارا سفر پر جانا مبارک ہو، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آؤ. تو چنانچہ جب بھی وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور کے روزے پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور جواب میں حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ شعر سنتے تھے، اور باقی افراد نہیں سنتے تھے، صرف جامی سنا کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو چنانچہ جب آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر اسی طرح روزے پر جب حاضری ہوئی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ بسفر میر عوام چے فرمائی سیدی و مرشدی و مولائی. تو جواب آیا بسفر رفتنت مبارک بات. غور کیا، دوسرا مصرع نہیں سننے میں آ رہا، پھر دوبارہ شعر پڑا، پھر وہی جواب آیا بسفر رفتنت مبارک بات، سفر پر جانا آپ کا مبارک ہو. دوسرا مصرع نہیں سن رہے جس میں ذکر تھا بس بسلامت روی و باز آئی، سلامتی سے جاؤ اور پھر واپس آؤ. تو جامی سمجھ گئے کہ معلوم ہوا یہ میرا آخری سفر ہے، مجھے پھر یہاں آنا میری قسمت میں نہیں، پھر دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، پھر اس کے بعد حج کا موقع نہیں ملا اور آپ انتقال فرما گئے. بھائی تو یہ اللہ والے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا، جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے ہیں وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے جواب کو سنتے ہیں. جب وہاں روزے پر حاضر ہو کر سلام کہتے ہیں تو باقاعدہ حضور کے جواب کو سنتے ہیں بھائی. اور یہ تو روایات میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سب کا جواب دیتے ہیں بھائی. لیکن جن کو اللہ نے سننے والے کان دیے ہوں وہ سنتے بھی ہیں. والد صاحب رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی، وہ عجیب ان کی شخصیت تھی. انہوں نے اپنے آپ کو تمام زندگی بہت چھپا کر رکھا، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات زبان پر ان کے آ جاتی. طلبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے ہر رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے بھائی. اور والد صاحب کو بھی اللہ نے ایسا عشق نبی نصیب فرمایا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ایک مرتبہ وہ عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ترمذی شریف کے درس میں طلبہ سے فرمایا کہ بھائی میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں اور 15-20 دن بعد میری واپسی ہوگی، تو آپ لوگوں کے لیے کیا لاؤں بھائی وہاں سے. والد صاحب کی بڑی جلالی طبیعت تھی بھائی، ایک عجیب اللہ نے روب دیا تھا، من جانب اللہ روب تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. اتنا روب کہ جسے آپ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ لگا لیجئے، والد صاحب رحمہ اللہ کا درس ترمذی روزانہ ظہر کے بعد شروع ہوتا تھا عصر تک بھائی، تو روزانہ 2-2.5 گھنٹے تقریباً ترمذی شریف کا سبق ہوتا تھا. اور کتنے ہی طلباء نے، آپ کے کتنے ہی تلامذہ نے ہمیں وفات کے بعد آ کر بتلایا کہ میں حضرت کے سامنے پہلی صف میں بیٹھتا تھا، صرف حضرت سے 1-1.5 گز کے فاصلے پر، اور پورا سال میں یہاں پہلی صف میں بیٹھتا رہا، لیکن پورے سال میں اتنی ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ نظر بھر کے حضرت کے چہرے کو دیکھ لوں بھائی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سال کوئی کسی کے سامنے بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نظر بھر کے حضرت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب رعب آپ کو نصیب فرمایا گیا تھا بھائی. تو طلبہ بتلاتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لاؤں. تو حضرت کا جلال روب بہت زیادہ تھا، سارے خاموش ہیں. آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی کیا لاؤں آپ لوگوں کے لیے. سینکڑوں طلبا بیٹھے، ایک طالب علم نے ہمت کر کے درمیان سے بولا کہ استاد جی وہاں روضہ اقدس پر ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا. پھر تو سارے ہی بول پڑے کہ استاد جی ہمارا بھی سلام، ہمارا بھی سلام. فرمایا ٹھیک ہے بھائی. چنانچہ سفر پر چلے گئے بھائی، اور پھر واپس آئے. جب عمرے اور حج وغیرہ کے سفر سے واپس آتے तो हमेशा तलबा से बड़ी अजीब मोहब्बत होती थी जो इल्म-ए-दीन पढ़ने वाले तलबा थे, तो उन सबको मदीना मुनव्वरा की खजूरें भी खिलाते और आबे जमजम भी पिलाते थे। तो वापस आए और वहां दर्स में फिर तलबा से फरमाने लगे, मैंने वहां रोजा रसूल पर आप लोगों का सलाम पेश किया और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो गरीब और मिस्कीन तलबा हैं जो सारा साल काल अल्लाह काल रसूल पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, वो आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। और फिर आगे फरमाने लगे कि वल्लाह सुम्मा वल्लाह, मैंने अपने कानों से सुना कि हुजूर अलैह सलाम ने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। भाई तलबा की चीखें निकल गईं, भाई रोने लग पड़े सब। भाई तो उनकी एक अजीब शख्सियत थी वाली साहब की, और वाली साहब को अल्लाह ने ऐसा इश्क नबी नसीब फरमाया था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आपके जितने तलामिजा आपको मिलेंगे उनके, वो सब जिक्र करते हैं कि जो इश्क नबी हमने हजरत में देखा वो इश्क नबी और हमने कहीं नहीं देखा। आपके एक एक अमल से इश्क नबी टपकता हुआ मालूम होता था। रोजाना दरसे तिर्मिजी के साथ शिमाइले तिर्मिजी, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की आदात वगैरह जिक्र हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, हुलिया मुबारक और इसी तरह वफात वगैरह, इन चीजों का जिक्र है, वो शिमाइले तिर्मिजी भी वाली साहब पढ़ाते थे। अव्वलन दरसे तिर्मिजी होता और फिर आखिर में थोड़ी देर के लिए शिमाइल का भी सबक होता था। तलबा बतलाते हैं कि शायद ही शिमाइल का कोई सबक ऐसा गुजरा हो जिसमें खुद भी ना रोए हों और तलबा को भी ना रुलाया हो। भाई और खास तौर पर जब वफातुन नबी का जिक्र आता था तो उसका जिक्र ऐसे अजीब अल्फाज में करते थे कि तलबा की चीखें निकल जाती थीं। दारुल हदीस में एक अजीब एक चीखो पुकार का समा होता था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई तो ये मुल्ला जामी, जिनकी ये अजीम शरा अब हम शुरू करेंगे, और ये बड़े अल्लाह वाले थे और बहुत अल्लाह ने इनको अजीब मकाम और अजीब शोहरत नसीब फरमाई जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और होना तो ये चाहिए था भाई, ये पूरी किताब आगाज से इख्तिताम तक हम पढ़ते, लेकिन निसाब के अंदर ये सिर्फ मरफूआत से जो हिस्सा है वो शामिल है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम हिस्सा पढ़ लें, अगर अल्लाह ने वक्त में बरकत दी और मौका मिला तो इसी साल कोशिश करेंगे कि जितना निसाब से जायद हिस्सा है उसको भी हम पढ़ लें जिस कदर पढ़ सकें। भाई और इस किताब के आगाज में, इस किताब के आगाज में एक हासिल महसूल की बहस आती है। भाई हासिल महसूल तकरीबन ये बड़ा नुस्खा हो किताब का तो उसमें तकरीबन एक डेढ़ सफे की बहस है हासिल महसूल, और वो बड़ी मुश्किल और पेचीदा बहस है, हत्ता के बड़े बड़े असातिजा उसको पढ़ाते हुए परेशान होते हैं। भाई वालिद साहब रहमहुल्ला ने इस हासिल महसूल की शरह लिखी। भाई ये डेढ़ सफे की बहस है और इसकी शरह की तकरीबन कोई 500 के लगभग सफहात में। भाई और ये वालिद साहब रहमहुल्ला की पहली तसनीफ थी तालिब इल्मी के बाद। जब वालिद साहब रहमहुल्ला ने दौरा हदीस किया तो अभी आपकी दाढ़ी भी पूरी तरह नहीं आई थी, इंतहाई कम उम्री में, और फिर दौरा हदीस के बाद आपने जो पहली तसनीफ की वो इस हासिल महसूल की शरह की, जिसका नाम है बुगियतुल कामिल। बुगियतुल कामिल अस्सामी फी शरहिल महसूल वल हासिल लिल जामी। तो बुगियतुल कामिल के अंदर वो इस हासिल महसूल की बहस की शरह करते हैं, और बड़ी मुश्किल और पेचीदा किताब है भाई बुगियतुल कामिल। खुद वालिद साहब रहमतुल्लाह बुगियतुल कामिल के मुकदमे में लिखते हैं कि यह नहव की मुश्किल तरीन किताबों में से है और इसे हर एक नहीं समझ सकेगा। भाई हर एक नहीं समझ सकेगा, और ऐसी अजीब किताब है, इंसान हैरान रह जाता है। अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमहुल्ला जो बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और बरे सगीर के उलमा उनके नाम से बखूबी वाकिफ हैं। तो जब वाली साहब ने ये बुगियतुल कामिल लिखी तो शुरू में तकरीज लिखवाने के लिए उनके पास ले गए, और अल्लामा शम्सुल हक अफगानी उलूम फुनून में बड़ी महारत रखते थे। उन्होंने तकरीज लिखी और तकरीज में वो लिखते हैं कि मैं साल हर साल तक नहव की तदरीस करता रहा हूं, नहव के तमाम मसाइल मैं जानता हूं, और पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में जहां कहीं भी मैं सफर करता हूं तो जो मकतबा वगैरह हो, जो उस इलाके में जो मकतबे हों, मैं उनमें जरूर जाता हूं और वहां किताबों का मुताला करता हूं। लेकिन मेरा जहन अब यह बन गया था कि नहव की किताबें अब शायद मुझे फायदा कभी नहीं देंगी, क्योंकि मैं नहव की जो भी किताब उठाता और उसका मुताला करता तो उसमें जो भी बातें लिखी होती वो पहले से ही सारी मुझे मालूम होती थी। तो मेरे जहन में था कि अब शायद ही कोई नहव की किताब ऐसी मिले जो जिससे मुझे कोई फायदा हो जाए। लेकिन फिर आगे फरमाते हैं, ये जो किताब है बुगियतुल कामिल, इसने मेरे इलम में बे इंतहा इजाफा किया। इंसान हैरान रहता है, एक तालिब इलम दौरे हदीस करने के बाद एक किताब लिखकर ला रहा है और एक इलम का पहाड़ कह रहा है कि इस किताब ने मेरे इलम में बे इंतहा इजाफा किया भाई। और फिर लिखते हैं कि इस किताब को इस मुसन्निफ ने ऐसी तरतीब दी है, इसकी तरतीब भी ऐसी है कि यह अकल इंसानी की इंतहा है भाई, इससे बेहतर तरतीब हो ही नहीं सकती। और फिर फरमाते हैं कि यह मुबालगा न समझना, मुबालगा मेरी आदत नहीं है, और ये इस आलिम की इलम का ये हाल है जवानी में, बल्कि नौजवानी में। ये उनके अल्फाज हैं कि अगर ये इस आलिम के इलम का ये आलम है जवानी में बल्कि नौजवानी में, तो मैं पेशेन गोई करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये शख्स अपने जमाने के उलमा का इमाम बनेगा भाई। तो ये उन्होंने इब्तदाई जमाने में वाली साहब के बारे में पेशेन गोई की थी कि अल्लाह ने ऐसा इलम दिया है, इंसान हैरान रह जाता है। और वाली साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जब मैंने किताब लिखी तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के साथ एक मरतबा उन्हीं दिनों ट्रेन में सफर करने का मौका मिला, और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के साथ एक और बड़े बूढ़े आलिम भी थे। तो ट्रेन चल पड़ी, सफर शुरू हुआ, अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो ये बुगियतुल कामिल का नुस्खा मौजूद है। मैं उठा, बैग में से वो किताब निकाली और वो आलिम को तोहफे के तौर पर दे दी कि ये मैंने किताब लिखी है। वो जो आलिम थे उन्होंने किताब खोली और एक आध सफा ही पढ़ा था अभी कि उठे और उठकर आए और मुझे 10 रुपए इनाम दिए। 10 रुपए तो उस जमाने में तनख्वाह हुआ करती थी भाई, इतने ज्यादा पैसे। तो 10 रुपए मुझे उन्होंने इनाम में दे दिए। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह हैरान रह गए कि भाई अभी आपने किताब खोलकर एक आध सफा नहीं पढ़ा और आप इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं। तो वह आलिम कहने लगे कि मैं 40 साल से शरह जामी पढ़ा रहा हूं और इस किताब के पहले सफे पर जो बात लिखी है मुझे उसका इलम नहीं था भाई। तो ये अबाले साहब रहमतुल्लाह को अल्लाह ने अजीब उलूम नसीब फरमाए थे भाई, और अजीब सुन्नत की मोहब्बत उनको नसीब फरमाई थी। तो उनकी ये किताब है बुगियतुल कामिल भाई। लेकिन बहरहाल वो हिस्सा तो अब निसाब में शामिल ही नहीं है। और मैंने बताया कि शुरू में ये चूंकि जामी में सारी तरकीबों की बात होगी तो हम चंद दिन तरकीब कर लेंगे, जब आपकी बुनियादी तरकीब आपको आ जाएगी इंशाल्लाह फिर जामी में वो जो भी बात करेंगे आपको समझ में आती जाएगी। तो शुरू में चंद दिन हम तरकीब करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह किताब शुरू कर देंगे। अगर 10-12 दिन हम 15 दिन तरकीब कर लें और इतना ही तौफीक अल्लाह दे दें 2-2, 3-3 घंटे, इंशाल्लाह बेहतरीन तरकीब इबारत आप पढ़ना आपको आ जाएगी कि इबारत पढ़ते कैसे हैं। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।